Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं। कृपया अगर सभी लोग बैठ जाएं तो आनंद आएगा सबको। बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बैठेंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमको। कष्ट हो रहा है आपको यात्रा में? तो यहाँ पर हमारे राधा कुंड के भक्त, गोविंद कुंड के भक्त हैं, उनको प्रणाम करेंगे सभी लोग बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ हाँ
ब्रज की यात्रा का ऐसा कहते हैं कि यहाँ की यात्रा में जब तक शरीर पर कष्ट नहीं पड़ेगा तब तक यात्रा का रस और आनंद और उसका फल आपको प्राप्त नहीं
होगा।
फल तभी प्राप्त होगा जब शरीर पर कष्ट पड़ेगा।
जय। तो हम कथा कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर हम लोग थोड़ी देर आधा घंटा कथा करेंगे। ये जो है गोवर्धन कैसा स्थान है और सबसे बेस्ट प्लेस है, जगह का नाम है गोविंद कुंड। आवाज आ रही है आप लोगों को? गोविंद कुंड ये जो स्थान है, ये स्पीकर्स के बीच में लोग आ रहे हैं ना इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। उठा के इसको इधर रख दो, स्पीकर को इधर रख दो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
श्री राधा श्याम सुंदर की श्री वृंदावन धाम यात्रा की श्री गिरी गोवर्धन की गोविंद कुंड की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे श्याम। तो ये जो सुंदर वृंदावन धाम है और गिरी गोवर्धन, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बहुत समय पहले मैंने कुछ वृंदावन के बारे में लिखा था इस नोट कॉपी के अंदर, तो उस नोट कॉपी से चीटिंग करके कुछ बोलते हैं। तो बताते हैं गर्ग संहिता के अंदर से कि किस प्रकार से ये जो गोवर्धन है जिसका हम दर्शन करेंगे, अभी हम यहाँ पर आए हैं गोवर्धन में, तो इसके थोड़ी सी दूर पर जाकर यहाँ पर हरे कृष्णा, थोड़ी सी दूर पर जाकर यहाँ पर क्या है, गोवर्धन जी का दर्शन है। जब हम यहाँ से जाएंगे राइट साइड पे तो गोवर्धन जी का दर्शन है, और सामने हमारे जो ये कुंड दिखाई दे रहा है ये है, हरे बोल, बार बार हिल रहा है इसे, हरे कृष्णा। तो ये दूसरा स्थान कौन सा है, गोविंद कुंड, जो सामने आपके कुंड दिख रहा है, विशेष कुंड है। तो इस कुंड को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये गिरिराज जी कौन है। तो बताते हैं कि राधा और कृष्ण भगवान जब अपने आध्यात्मिक धाम, कौन सा धाम है आध्यात्मिक, गोलोक धाम, तो गोलोक धाम में जब वो होते हैं और क्या करते हैं, उनका प्रिय कार्य माधुर्य रस में रास नृत्य करते हैं। तो जब भगवान रास नृत्य करते हैं तो राधा रानी की एक इच्छा होती है और वो बोलती है कि ये श्याम सुंदर, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूर्ण कर सकते हो। बोले क्या, तो बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि जब हम इस द्वापर युग में लीला करने के लिए जाएं तो वहां पर कुछ ऐसी वस्तु होनी चाहिए जहां पर क्या हो, जैसी वस्तुएं यहाँ है वैसी वस्तुएं हो। जैसे हम चाहते हैं जब हम कभी किसी जगह शॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरमेंट हो जैसे एनवायरमेंट, जैसे माहौल हमारे घर का है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब भगवान भी आते हैं तो बिना माहौल के तो आएंगे नहीं। तो भगवान आते हैं, सबसे पहले अपने ग्वाल बालों को भेजते हैं, अपनी शक्तियों को भेजते हैं, योग माया को। तो इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उससे पहले उनके सात भाई है ना, बोलते हैं कि उनको मारा गया था कंस के द्वारा, तो उनके कौन है, वो ग्वाल वाले सखा आ रहे हैं और अनेकों लोग ब्रज मंडल में आ रहे हैं, और उसी प्रकार से राधा रानी आ रहे हैं, और साथ में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, यमुना जल और ब्रज रज और गोवर्धन। तो ये गोवर्धन किस प्रकार से प्रकट होते हैं, तो बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से बोला कि हे राधा रानी, हरे कृष्ण, सम प्रॉब्लम, हे राधा रानी, हरे कृष्णा। उसको नीचे रख दीजिए यहाँ पर शायद।
नहीं नहीं इसको थोड़ा
हाँ
मैं जो बैटरी जो है ना
नहीं, वो एक्चुअली
लैरिटी तो परमानेंट। हरे कृष्णा। हाँ तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हे राधा रानी, ये आप जो जाते हैं मैं यहाँ पर लेके आऊँ, तो क्या चाहती हैं आपकी, क्या नीचे होना चाहिए? तो राधा रानी ने बोला कि जब कृष्ण मैं आपका दर्शन पाती हूँ तो मेरे हृदय में क्या आता है, सबसे ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे हमारे भी होता है ना, जब हम अपने किसी लविंग व्यक्ति को देखते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। तो राधा रानी के हृदय में जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो प्रेम क्या होता है, यहाँ पर प्रकट होता है। किस रूप में? ब्रज क्षेत्र के रूप में। तो ये कुछ और नहीं है, राधा रानी के हृदय का हिस्सा है। तो बताते हैं कि जब उनके हृदय का हिस्सा एक छोटा सा बीज होता है ना, कैसे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति से ये बीज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि बीज रूप में राधा रानी के हृदय से क्या हुआ, कृष्ण ने उस जगह पर एक बीज उत्पन्न किया। कहां पर? इस पृथ्वी पर, वहां पर, कौन से, गोलोक धाम में, सॉरी। तो गोलोक धाम में बीज उत्पन्न होता है और उस बीज के बाद में बीज से अचानक से एक थोड़ा सा बड़ा शिला बन जाती है, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा चट्टान बन जाती है, और फिर वो चट्टान पहाड़ बन जाती है, और फिर पहाड़ विशाल पहाड़ बन जाती है। तो राधा रानी कहती है अरे ये क्या हो रहा है, इतना सब विशाल होता जा रहा है। तो फिर उनको बोलते हैं कि उसकी चौड़ाई लंबाई बताते हैं 800,000 चौड़ा हो गया वो पर्वत जो सीड उनके हृदय से निकला, मतलब कितना विशाल प्रेम है, और 8 billion miles लॉन्ग, इतना लंबा, 8 billion miles, इतना बड़ा वो पहाड़ बन गया था। जाके जैसे बताते अनंत शेष, उनके अनेकों हुड्स, अनेकों सिर है, उस प्रकार से उनके भी बहुत सारा, इतना बड़ा विशाल हो गया था अनंत शेष जिसपे भगवान विश्राम करते हैं वो माउंटेन। इसीलिए इसका नाम है गोवर्धन। क्या नाम है? वर्धन मतलब बढ़ना। इसीलिए वो जो बीज था प्रेम रूपी, वो क्या हो रहा था, वर्धन, वो बढ़ता जा रहा था। और गो का एक और अर्थ होता है क्या, इंद्रियां, है ना। तो इंद्रियों के अंदर अगर हम कृष्ण भगवान का प्रेम जागृत करते हैं और या कृष्ण नाम लेते हैं तो इंद्रियां कृष्ण के प्रेम में वर्धन होंगी, है ना। तो ये जो गोवर्धन है इससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण प्रेम में वर्धन करें, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि फिर कृष्ण भगवान ने क्या बोला, गोवर्धन को एक स्लैप किया, क्या कि तुम तो इस तरह से क्या करोगे, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाओगे। पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैलाना चाहते, सिर्फ लीला स्थली में रखना चाहते हैं। तो उनको लीला स्थली में भगवान ने रखा। और इसी प्रकार से ये जो गोवर्धन है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, गोवर्धन, जो कि हमारे क्या करते हैं, गायों का भी वर्धन करते हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे तो क्या हुआ था, यहाँ पर गायों की रक्षा करने के लिए, गायों को फल घास देने के लिए इस गोवर्धन के ऊपर आते थे चराने के लिए। तो ये गोवर्धन एक प्रकार से क्या है, गायों का वर्धन करने वाला है, गायों का चारा पैदा करने वाला है। तो गोवर्धन की बहुत मानता है। और ये जो गोवर्धन है आता है कि व्रज मंडल में कैसे प्रकट होते हैं, ये तो हमने जो आपको लीला बताई, ये कहाँ प्रकट हुए, ऊपर गोलोक धाम में। और उसी प्रकार से जब राधा रानी बोलती हैं कि कृष्ण जब आप द्वापर युग में जाओगे तो सारी चीजें पहले से उत्पन्न होने चाहिए। तो ये दो लीलाएं बताते हैं, एक लीला तो ये बताते हैं कि जिस स्थान पे कृष्ण खड़े थे और उन्होंने बोला कि राधा रानी तुम चाहती हो कि सारी चीजें उत्पन्न हो, तो उसी स्थान को पैर से अपने ऐसे टक्कर मारी और उसका कुछ अंश आकर इस ब्रज क्षेत्र में गिरा, तो वही ब्रज मंडल बन गया, है ना। तो पूरा सोच लीजिए, ये गोलोक धाम का ही एक पत्थर है ना, तो एक अंश है। अरे बोल, तो और दूसरा एक और लीला आती है कि एक बार एक ऋषि थे, उनका नाम क्या था, पुलस्त्य मुनि। तो पुलस्त्य मुनि चाहते थे क्या कि इस ब्रज मंडल, अपने जो क्षेत्र है काशी, काशी जानते हैं आप कहाँ पड़ता है, काशी
बनारस,
वहां पर चाहते थे कि जो द्रोण पर्वत है, हिमालय का अंश, प्रॉब्लम आ रहा है, द्रोण पर्वत जो है उसमें क्या करें, उसकी हमें प्राप्ति हो जाए द्रोण पर्वत की। और द्रोण पर्वत के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था, द्रोण पर्वत के बेटे का नाम था गोवर्धन। और ये द्रोण पर्वत जो थे हिमालय रेंजेस, जो हिमालयन रेंजेस, वहां से द्रोण पर्वत के पास जाते हैं, जो पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, आप सोचेंगे उनके बेटा कैसे हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से जीवात्मा चेतन वस्तु है, इसी प्रकार से पर्वत और पहाड़ भी चेतन वस्तुएं हैं। और पर्वत और पहाड़ का जब अंश होता है ना, पत्थर जब उनसे अलग हो जाता है तो वो क्या रहता है, इसको नीचे रख दो वरना ऐसे डिस्टर्ब होता रहेगा।
हरे कृष्णा इसको यही इधर रख दो फ्रंट में ना ना ठीक है हाँ हरे कृष्णा। तो इस तरह से जो द्रोण पर्वत थे उन्होंने उनको बोला गया कि आप अपने बेटे का दान मुझको दे दीजिए। क्या दे दीजिए मुझे अपने बेटे का दान दे दीजिए, मुझे अपना बेटा प्रदान कर दीजिए। उनका बेटे का क्या नाम था? तो पुलस मुनि गोवर्धन को लेकर चल दिए वहां से। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, किसी को सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने पत्नी अपने बच्चे किसी को दे सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है देना। तो देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। और जो ऋषि मुनि होते हैं या भक्त होते हैं, जब वो आपसे कोई वस्तु मांगे तो तुरंत उनको प्रदान कर देनी चाहिए, तभी हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो द्रोण संस्कारी थे और उन्होंने क्या किया, उनको अपने पुत्र को दान दे दिया। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से वस्तुएं जीवित होती हैं। तो जिस प्रकार से पौधे जीवित होते हैं, व्यक्ति जीवित होते हैं, ऐसे ही पर्वत भी जीवित होते हैं। लेकिन पर्वत का जब अंश, जैसे हमारे शरीर में ये हाथ पैर है लेकिन एक उंगली को काट दिया जाए और जमीन पे फेंक दें तो वो जीवित रहेगी कि निर्जीव रहेगी? जीवित तो नहीं है। उसी प्रकार से पर्वत का जब हिस्सा पत्थर के रूप में गिर जाता है तो क्या कहलाता है? पत्थर। लेकिन वो जीवित नहीं है, चेतन वस्तु नहीं, अचेतन है। लेकिन जब वो पर्वत होता है तो वो क्या है? चेतन वस्तु है। और उसमें भी द्रोण के संस्कारी पुत्र कौन? गोवर्धन। तो ये गोवर्धन थे, इनको उठा के पुलिस मुनि चल दिए वहां से। जिस प्रकार से हनुमान जी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे तो उसी प्रकार पुलिस मुनि भी अपने हाथ में द्रोण गोवर्धन को लेकर चल दिए। और जब गोवर्धन को लेकर चले तो एक शर्त रखी गोवर्धन ने कि मैं आपके साथ चलूंगा काशी तक, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि मुझे जहां रखेंगे बीच में वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगा, उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। आपके दम होना चाहिए कि हिमालय से लेके काशी तक हाथ में लेके जाओ। तो वो लेके चल दिए, पावरफुल थे। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचकर जब व्रज मंडल क्षेत्र से निकले तो यहां पर आकर उनको क्या हुआ? लघु शंका, टॉयलेट आ गया उनको। और फिर उसके लिए वो गए तो पवित्र वस्तु को नीचे रखना पड़ेगा। जब नीचे रखा तो वो भूल गए। होता है ना, जब आदमी को प्रेशर होता है भूल जाता है सारी चीजें, कहाँ है, कैसा हूँ, कैसे व्यस्त हूँ। फिर आता है माता जी का स्वच्छ भारत अभियान। तो इस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान को सोचते हुए उन्होंने भी क्या, उसको नीचे रख दिया और दूर चले गए। और जब वापिस आए तो बहुत जोर लगाया लेकिन गोवर्धन ने मना कर दिया। क्योंकि गोवर्धन क्या चाहते थे, किसकी सेवा करना चाहते थे? भगवान कृष्ण की। क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण भगवान यहाँ आने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो यहाँ आए लेकिन उनको पुलस्त मुनि ने श्रापित कर दिया। पावरफुल थे, उनके साथ चलने को जब तैयार नहीं हुए तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम तिल तिल कर कर घटोगे। और तुम हर रोज तिल के बराबर साइड मस्टर्ड और सीड, क्या होते हैं, सरसों के बीज के बराबर रोज तुम घटोगे। तो द्वापर युग की लीला है, आप देखिए। तब उस टाइम क्या इनका साइज होता था बताते हैं। 64 माइल लंबे, लॉन्ग हाइट में, और 40 माइल चौड़े और 16 माइल टॉल। सोचिए 16 माइल कितने किलोमीटर होता है? 16 × 1.6 कितने किलोमीटर हुआ? हाँ जी, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर हाइट है। 26 किलोमीटर हाइट थी गोवर्धन की द्वापर युग में। लेकिन उनको श्रापित किया कि सरसों के तिल के बराबर, दाने के बराबर आप घटोगे। तो घटते घटते अभी कितने रह गए हमें दिखाई देता है, तो छोटे से हैं। और अभी भी अगर आने वाले समय में, जैसा आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे कल प्रवीण कृष्ण प्रभु जी से, कि अभी क्या चल रहा है, द्वापर और कलयुग के बीच की संध्या का समय चल रहा है। अगले 10,000 सालों में गोवर्धन लुप्त हो जाएंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीते जी हम गोवर्धन पर आए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन का। तो बहुत ही सुंदर ये गोवर्धन है और इनकी जो परिक्रमा है ये बताते हैं कि बहुत दूर 150 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी जब ये द्वापर युग में थे। तो जब ग्वाल बालों ने जो परिक्रमा करी हम सुनते हैं वो 150 किलोमीटर की परिक्रमा थी। और अभी हम कितनी करते हैं? 22 किलोमीटर। उसमें भी हालत खराब होती है, आधी लोग गाड़ी से करते हैं, बीच में रेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग 7 की करते हैं, कुछ 9 की करते हैं, अलग अलग 13 की करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो ओवरऑल इतनी है। और गोवर्धन लीला तो आप जानते हैं कि गोवर्धन लीला किस प्रकार से हुई थी। कि गोवर्धन लीला इसलिए हुई क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर कंस जो थे उनके मामा क्या करते थे,
उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको मारना चाहते थे। क्यों? उनको पता था कि जो देवकी का आठवां पुत्र है वो क्या होगा, मेरा काल होगा, मुझे मार डालेगा। तो उसके लिए भगवान को मारने के लिए कंस अलग अलग राक्षसों को भेजते थे। कभी तो भेजते थे तृणाव्रत, जो कि एकदम साइक्लोन की तरह आता था और भगवान को उठाकर ले गया था हवा में, और भगवान इतने भारी हो गए कि उसको लेके नीचे गिर गए, है ना, फिर वो मर गया। इसी प्रकार से अघासुर नाम का सांप था, जिसने अपना मुंह खोलकर बैठ गया और सांप को लगा कि ये तो गुफा है। सारे उसके अंदर चले गए, ग्वाल बाले और कृष्ण, लेकिन कृष्ण उसको फाड़कर तोड़कर बाहर निकले उसके पेट में से। तो इस प्रकार से अनेकों राक्षसों का वध किया, और जिस प्रकार से बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, हाँ, और भी केशी, बहुत सारे राक्षसों का, हाँ, पूतना को भेजा गया, अनेकों अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन सारे के सारे भगवान के आगे टिके नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की जो ग्लोरीज थी, महिमा, वो धीरे धीरे फैलने लग गई, चारों तरफ फैल रही थी। तो जब गोवर्धन पे यहाँ पर भगवान रहते थे इस स्थान पर, तो भगवान ने एक दिन देखा कार्तिक के महीने में क्या कर रहे हैं कि जो उनके पिताजी हैं नंद बाबा, वो और पूरे जितने भी बाकी उनके नंद बाबा 7 ब्रदर्स थे, और सारे भाई मिलकर और पूरे गांव के लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे तभी तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो फसलें बड़ी होंगी, तो फिर अन्न आएगा और फिर हमारे घर में दीपावली मनाई जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये तो इंद्र का ड्यूटी है, क्या है, तो कोई हम ड्यूटी वाला कार्य अगर करें ये सोचते हुए कि हम सेवा कर रहे हैं तो गलत है। सेवा तो होती है जिसके पीछे कोई व्यक्ति का स्वार्थ ना हो। तो ये तो इंद्र की ड्यूटी बनती है कि उनको इस समय वर्षा करनी ही करनी है, उसके लिए पूजा की क्या आवश्यकता। तो सारे लोग जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा करेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, है ना। और भगवान गीता में, भगवद गीता में बताते हैं कि वो लोग भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं जिनकी कैसी बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि होती है, और माया द्वारा हर ली जाती है। मायास्तेते हतः ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो लोग भगवान की शरण को छोड़कर देवताओं की शरण में जाते हैं जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे ग्वाल बाल मिलकर भगवान को छोड़कर किसकी पूजा की तैयारी कर रहे थे, इंद्र की। क्या क्या बना रहे थे? 56 भोग, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पकौड़े, आहा पानी आ गया प्रसाद सच के। तो इतनी सारी चीजें वो बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। किसके लिए बना रहे थे? इंद्रदेव के लिए। कृष्ण भगवान कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। तो उन्होंने विरोध कर दिया, बोले बाबा, नंद बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? बोले इंद्र की। तो बोले अरे इंद्र की पूजा की क्यों, ये जब तो गोवर्धन को देना चाहिए, क्योंकि हमारी गायों का वर्धन कैसे होता है, इस गोवर्धन के कारण। इसके ऊपर जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उसमें जाकर हमारे बंदर, हमारी गायें, हम ग्वाल बाल जब गाय चराने जाते हैं तो रेस्ट करते हैं, कितना सुंदर है ये। इसी गोवर्धन के ऊपर जो वृक्ष और पेड़ पौधे हैं, घास है हरी हरी, उसको खाकर ही तो गाय क्या होती है, दूध प्रदान करती है। इसके ऊपर जो झरने हैं और कुंड हैं, उसमें हम स्नान करती है हमारी गाय, और हम क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। उसको छोड़कर हम ऐसा इंद्र जिसको हम देखते भी नहीं है, जो सिर्फ वर्षा करता है, जो उसकी ड्यूटी है, उसकी पूजा क्यों करें। तो बहुत लंबा कन्वर्सेशन चला। कृष्णा बुक में बताते हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से भगवान ने अपने पिताजी नंद बाबा को समझाया, और नंद बाबा जो थे वो कृष्ण की पकड़ में आ गए, मान गए, भगवान की बात कौन टाल सकता है। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है कृष्ण, तुम क्या चाहते हो? बोले ये जितना भी 56 भोग बना है, जितनी भी वस्तुएं बनी है, 108, 56, 1008 जो भी बना था, क्या करो आप, गोवर्धन को प्रदान करो, और फिर गोवर्धन को प्रदान कर उनकी परिक्रमा करो, और परिक्रमा करने से गोवर्धन प्रसन्न होंगे। तो सब लोग तो घबरा रहे थे, है ना, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, अरे बस इकला प्रभु कृष्णा आर सब भ्रत, बस कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। और कहते हैं यार इच्छा ताते कर नृत्य, और जैसी कृष्ण की इच्छा होती है वैसी सभी देवता क्या करते हैं, नृत्य करते हैं उनके आगे। तो ये बात नंद बाबा को उन्होंने बोली, लेकिन घबरा रहे थे। तो बोले ठीक है कान्हा, तुम कहते हो तो हम भोग लगा देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? बोले कृष्ण बोले मैं हूं ना, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना फिल्म में, मैं हूं ना, लेकिन यहाँ शाहरुख नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूं ना। तो भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो, तो मैं हूं ना। सोचते ठीक है कृष्ण कह रहे हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि पहले भी वो अनेकों असुरों का वध कर चुके हैं, हमारे वृंदावन को बचा चुके हैं, तो ऐसे कृष्ण की बात मान ली जानी चाहिए। तो मान ली, कह रहे ठीक है। तो सारा भोग लाकर गोवर्धन जी को प्रदान किया गया और फिर परिक्रमा करी गई। कैसे परिक्रमा करी गई? जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन। इस प्रकार से सारे ग्वाल बाल अपने अपने रथों में चढ़कर कुछ नृत्य करते हुए करताल मृदंगा लेकर पूरी गोवर्धन की परिक्रमा किए और उसके बाद उनको भोग ऑफरिंग किए। भोग ऑफरिंग कर रहे थे जब, तो ये जो विलेज है, इस विलेज का नाम है क्या, कौन बताएगा? अन्योर। क्यों नाम इसका पड़ा? क्योंकि जो गोवर्धन थे उनकी भूख तृप्त नहीं हो रही थी। जितना भी 1008 भोग खिलाए जा रहे थे वो सब खाते थे और फिर आवाज आती थी अंदर से, क्या? अन्योर, और अन्य चाहिए मुझे, अन्योर, अन्योर, मुझे और अन्य चाहिए। तो सारे लोग घबरा गए, इसमें जरूर कोई देवता विराजमान है। वो अभी भी भगवान नहीं समझ पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देवता। हम देवी देवता की कंसंट्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाते। उन्हें लगता है कोई साधु है, हमारे घर की परंपरा की देवी है, ये है वो है, तो वे सब सोचते रहे। बोले कि इसमें लगता है कोई देवता है, जो देखो आवाज दे रहा है, क्या बोल रहा है? अन्योर, अन्योर, और अन्य चाहिए। तो इस प्रकार से जब बोला तो साले घबरा गए, अपने अपने घर गए और फिर दोबारा से पकवान व्यंजन बनाए और सारे लाकर भगवान को अर्पित किए। फिर वो सारा का सारा एक बार में खा गए और खाने के बाद फिर क्या बोले? अन्योर, अन्योर। अब सब घबरा गए, देवता तो नाराज हो गए, ये अकाल आ जाएगा यहाँ पर, तो जाओ जाओ अपने घर का एकदम डब्बा उल्टा करके सारा कुछ सब फिनिश कर डाले, सब व्यंजन लाके गोवर्धन को खिला दिए। फिर बलराम जो थे कृष्ण के स्वयं भाई, वो समझ गए कि ये सब लीला कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। तो बोले कृष्ण मैं समझ गया, कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय वस्तु क्या है?
तुलसी,
तुलसी, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, है ना? भगवान तुलसी के बिना कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुलसी कृष्ण प्रियसी, तुलसी कृष्ण को सबसे प्रिय है। तो उन्होंने उस भोग के ऊपर तुलसी को अर्पित किया, अर्पित कर कर बोले कि अभी इसे पाओ। और तुलसी को पाते ही वो डकार लेने लगे, गोवर्धन ओवर ईटिंग हो गया, अभी भर गया मेरा पेट। तो भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेषति तद अहम भक्तिया उपहत्तम। मैं कैसे प्राप्त करता हूँ उसको? भक्ति के रूप से ही मैं लेता हूँ, अगर आप भक्ति से उसे प्रदान करते हो। पत्रम मतलब तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत खीर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पत्ते से भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं हम खुद खीर खाएं, भगवान को तुलसी दे दें या टूटा हुआ पत्ता दे दें। बोले भगवान तुमने तो पत्ता मांगा था, पत्ता ले लो, हमारे लिए व्यंजन खीर छपन वो तो नहीं चलता है। भगवान कह रहे हैं पत्र मतलब कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसके पास बहुत अच्छा पकवान नहीं है, तो वो भी अगर पत्र पुष्प फल या जल मुझको प्रदान करेगा तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन सिर्फ मुझको, सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम। भगवान ने क्या बोला? माम एकम। बोला माम दुकम, माम तीकम नहीं, माम एकम। हरि बोल, सब लोग अंदर बैठ जाइए, बाहर मत जाइए। हरि बोल आदि कृष्ण, नहीं नहीं हरि बोल, उनको फीडिंग मत करिए आप लोग, मत करिए। हरि बोल, हरि बोल, कथा के बीच में डिस्टरबेंस मत करिए, अंदर बैठ जाइए ना, कथा में इंटरेस्ट नहीं तो बंद कर देते हैं। मत चलिए ना इधर उधर, बंदर को परेशान मत करिए, उन्हें खेलने दीजिए अपना। सारे बच्चे अंदर बैठिए आकर। तो इस प्रकार से जो गोवर्धन थे उन्होंने क्या किया, सारा का सारा अन्न प्रसाद खाया और तुलसी भी प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। और उसके बाद में सबने बोला कि हमको दर्शन दो गोवर्धन, हमको दर्शन दो। तो स्वयं कृष्ण क्या किए, गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए और अपना चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, विष्णु रूप में अपना दर्शन दिए। तो सारे लोगों ने कहा, ओ गोवर्धन तो सच में महान देवता है, देखो संतुष्ट हो गए हैं, है ना। और सब प्रसन्न हो गए कि अगली बार से हम क्या करेंगे, कार्तिक में सिर्फ गोवर्धन की ही पूजा किया करेंगे जैसा कृष्ण ने हमको बताया। बलराम तो जानते थे कि ये कृष्ण ही है जो पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए, गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन इंद्र के जो दूत थे वो बोले, भैया तुम्हारी तो पार्टी कट हो गई, अभी क्लाइंट कट दिया तुम्हारा, है ना। जैसे होता है ना, कोई और LIC एजेंट किसी को LIC बनाता है और कोई बोलता है आप हमें प्रीमियम दीजिए, हमारे से लीजिए, तो लड़ाई हो जाती है आपस में। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने उसका एजेंट को काट दिया था, इंद्र के क्लाइंट को काट दिया था, क्लाइंटेल खराब कर दिया, क्लाइंटेज। तो फिर जब क्लाइंटेज खराब हुआ तो बहुत गुस्सा आया इंद्र को। इंद्र ने कहा क्या कि जाकर इतनी तेज हवाएं चलाओ कि सारे वृक्ष गिर जाएं, सारे पर्वत की चट्टाने गिर गिर कर इन वृंदावन वासियों पे गिरे। तो खूब तेज तेज हवाएं चली, फिर भी नहीं माने वृंदावन वासी, गोवर्धन की परिक्रमा करते रहे। तो वो बोले, इससे भी नहीं, हाँ अगर मन भरता है तो मैं क्या करूंगा, वर्षा करूंगा। और वर्षा के लिए किसको चुने, संवर्तक। किसको, संवर्तक। संवर्तक वो है वर्षा जो तब होती है जब प्रलय आती है, और उसकी साइज होती है एक बूंद हाथी के सूंड के बराबर की होती है। हाँ, जैसे अभी पीछे वृंदावन में ओले पड़े तो सारे लोग घबरा गए, ओ इतने बड़े बड़े ओले, तो वो तो कुछ भी नहीं है। प्रलय के समय जब वर्षा होती है तो हाथी की सूंड के बराबर की एक बूंद होती है, ढपा किसी के ऊपर गिर जाए तो जस्ट इमेजिन। तो इस प्रकार से संवर्तक ने क्या किया, उस साइज की बूंद मूसलाधार बारिश। हाँ, अभी क्या होगा, सारे के सारी जगह पूरे वृंदावन के क्षेत्र में 150 किलोमीटर में क्या हो गया, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। तो कृष्ण भगवान को सब बोले, देखा काना, ऐसे होता है ना, जैसे मैं आप लोगों को लेके आया और लेट हो गए तो देखा प्रभु जी की वजह से लेट हो गए। तो जो व्यक्ति लेके आता है वही व्यक्ति बाद में कल्प्रेट भी हो जाता है। तो इस वजह से कृष्ण ने ही उनको बोले पूजा करने के लिए, और कृष्ण क्या हो गए, कल्प्रेट हो गए। अरे तुमने फंसा दिया नंद बाबा, तुम्हारे बेटे कृष्ण के चक्कर में हम भी फंस गए, अभी देखो क्या हो गया, यहाँ पर पूरी बाढ़ आ गई है। तो भगवान बोले, डरो मत। फिर से क्या बोले, मैं हूं ना, आई एम हियर। तो भगवान बोले, मैं हूं ना। तो फिर भगवान क्या किए, इस जो 150 किलोमीटर का पर्वत था, अभी 22 किलोमीटर का नहीं, 150 किलोमीटर फैला हुआ जो पूरा पर्वत था, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता ही कितनी थी, कौन बताएगा, 64 miles लॉन्ग, हाँ जी 16 miles लॉन्ग और 40 miles वाइड। तो इस तरह के जो गोवर्धन थे उनको भगवान ने कैसे उठाया, अपने सीधे हाथ से ऐसे हाथ लगाया और हाथ के ऊपर हनुमान जी की तरह उठा लिया, है ना। नहीं, कैसे उठाया, दोनों हाथों से कंधे पे रखा और वेट लिफ्टर की तरह, ओ गोवर्धन, कैसे उठाया, लेफ्ट हैंड से उठा के सिर पे रख लिया और फिर ओ करके उठे, कैसे उठाया, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, हाँ लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली जो है ये लिटिल फिंगर, जिसके है हम रोटी की चपाती तोड़ना चाहें तो नहीं, स्पून उठाना चाहें तो नहीं उठेगी, से इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया, जैसे कोई व्यक्ति मशरूम को उठाता है, मशरूम देखा, हम मशरूम से ऐसे उठा के खेलते हैं, ऐसे भगवान ने उठाया और उठाकर क्या किए, बांसुरी बजाने लगे, बांसुरी बजा रहे थे भगवान। और बलराम जी ने क्या किया, चारों तरफ से सर्प है ना, अनंत शेष है बलराम, भगवान जिस विष्णु अवतार में जिस पे लेटते हैं वही अनंत शेष से चारों तरफ से उन्होंने क्या किया, घेराबंदी कर ली, जैसे पानी आता है तो हाँ दीवार बना दी पूरी, और उसके अंदर एक भी बौछार नहीं आ रही थी। और पूरे ब्रज मंडल के जितने भक्त थे सब वृंदावन वासी कहां आ गए, उसके गोवर्धन के नीचे आ गए। और कितने दिन तक उठाया, सिर्फ 7 मिनट तक, हाँ जी पक्का लॉक किया जाए, 7 दिन उठाया, बस 7 रात भी उठाया, 7 days 7 nights, 7 दिन 7 रात, कितनी साल की उम्र में, 7 वर्ष, और कितने बड़े हाथ से, सिर्फ हाथ की करनी उंगली से, है ना, उठाए। और साथ में उनके चेहरे पर इतना ज्यादा वो था, क्रोध था, है ना, क्या था, मुस्कान थी, साथ में फ्लूट बजा रहे थे, भगवान बजा रहे थे म्यूजिक, और साथ में सारी गोपियां और सखियां कीर्तन कर रही थी, क्या कह रही थी, जय राधे जय श्याम जय वृंदावन, जय राधे जय
जय राधे जय श्याम जय वृंदावन जय राधे जय श्याम जय कालिंदी यमुना जय गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय
जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज धरन की गिरिराज गोवर्धन की श्याम सुंदर कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको उठाया अपनी कन्नी उंगली पे 7 दिन 7 रात तक। और फिर जब संवर्तक ने पूरा प्रयास कर लिया और जब पूरा का पूरा नहीं डूबा वृंदावन, सारे वृंदावन वासी आनंद कीर्तन चल रहा है। अरे अरे मैं टेंशन दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई टेंशन आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जॉब की प्रॉब्लम आ जाए, फिजिकल डिसीज हो जाए और आप मृदंग करताल कीर्तन करो तो माया देवी जो आपको माया में फंसाती कहती है अरे कैसा है ये, मैं इसको फंसा रही हूँ और ये आनंद कर रहा है, माला जपे जा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर उस मुक्त कर देती है ना। भगवान कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया कैसी है दुरत्या, इसको पार पाना अत्यधिक मुश्किल है, लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आता है वो इस दुर्गा देवी की माया से बच जाता है, मैं उसे बचा लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ये बात। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को उठाया और संवर्तक ने पूरा बारिश किया और पसीने पसीने हो गया। जब पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई तब आके इंद्र के आगे बोला, इंद्र वो कोई नॉर्मल बालक नहीं है, साधारण बालक नहीं है, मुझे तो लगता है वो कोई महान देव पुरुष है। अभी भी समझा नहीं कि वो कौन है, भगवान है। तो फिर देवराज इंद्र ने अनेकों देवी देवताओं से पूछा कि ये कृष्ण के रूप में कौन है, तो बोले कृष्ण के रूप में कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है। अच्छा हाँ, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं आते हैं द्वापर युग में, वो कोई अवतार नहीं है, स्वयं भगवान आते हैं, इसलिए उनके अंदर शक्ति अपार शक्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले क्या एक गिरि गोवर्धन को नहीं उठा सकते, वो तो उनके लिए कैसा है जैसे हम एक दाल का एक तिनका उठा के ऐसे उछाल देते, ऐसे उठाते हैं भगवान बिल्कुल लाइटली। तो इस प्रकार से उन्होंने उठाया और फिर जब 7 दिन बाद वर्षा बंद हो गई, इंद्र हार गया, तो फिर क्या किए सारे गोवर्धन के जो लोग गोवर्धन के वृंदावन वासी थे वो अपनी अपनी लाठी लगाए हुए थे, सारे ग्वाल बाल सखा लाठी लगाए और फिर इंतजार कर रहे थे कब बारिश बंद हो और हम कान्हा को थोड़ा सा रेस्ट दें, हमारा प्यारा बालक कृष्ण हम इसको रेस्ट दें। तो सब क्या किए बोले कृष्ण तुम 7 दिन से 7 रातों से उठाए खड़े हो, अब तुम क्या करो तुम निकलो पहले, हम आते हैं पीछे, हम लाठी लेके खड़े धीरे धीरे लाठियां हटा के एक करके हम निकल जाएंगे। कृष्ण बोले पक्का? हाँ पक्का। तो कृष्ण भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा किया, टेढ़ा करते ही क्या हुआ लाठियां चर चर टक 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 टूट गई साइड, सब बोले अरे अरे उठा उठा कृष्णा उठा उठा कृष्णा, मैं तो गया गए गए हम तो गए पकड़ पकड़। तो कृष्ण तुरंत उंगली स्ट्रेट कर ली दोबारा से, जब उंगली सीधी करी सब बोले हाँ बच गए, चलो 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 पहले हम निकलेंगे हम निकलेंगे हम निकलेंगे, सब बाहर निकल गए। तो कृष्ण बोले सब बाहर आ गए, तो कृष्ण ने उसको फिर रख भी वैसे ही दिया जिस स्थान से उसे उठाया था। तो भगवान वहां पर एक लीला से एक शिक्षा और देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी तदीय वस्तु अगर हम कहीं से उठाते हैं तो उसको हमें वहीं पर वापस रखना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव सेवा में है, गोवर्धन भी सेवा में है। तो कृष्ण बताते हैं कि जिस सर्कमफ्रेंस से उनको उठाया था एज इट इज उसी सर्कमफ्रेंस पर उनको रखा, ऐसा नहीं किया कि यहां से उठाया मैं तो कृष्ण चल जा मथुरा से बाहर आगरा में चला जा, ऐसे नहीं किया, भगवान ने जिधर से उठाया उसी स्थान उसी सर्कमफ्रेंस में वापस उनकी सेवा में उनको रखा। तो ऐसे हम भी किसी भक्ति कोई वस्तु लेते हैं, बुक आचार्य बुक देना माता जी लिया बैग में डाल लेते हैं या फिर भूल जाते हैं या कहीं और रख के चले जाते हैं, हमारे को क्या करना चाहिए, कृष्ण शिक्षा देते हैं जिस भक्त की जो चीज लें उसको एज इट इज वो चीज रिटर्न करें एज इट इज। इसलिए हमारी भगवत गीता का नाम भी क्या है, तो उसमें भी प्रभुपाद शिक्षा देते हैं हर एक चीज को एज इट इज करें। तो फिर जब भगवान कृष्ण बाहर निकल के आए तो सारे ग्वाल बाल सखा क्या बोले, वाह कृष्ण वाह आज तो कमाल कर दिया, मतलब पहले तो 2-2 मिनट में राक्षसों को मार देते थे, आज तो 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठा के तुमने हमारी क्या करी रक्षा करी। लेकिन एक बात तो बताओ कृष्ण ये ताकत कहां से लेके आए, इतनी, जो मक्खन तुम खाते हो वही मक्खन हम भी खाते हैं, जो मटकी तुम फोड़ते हो वही मटकी हम भी फोड़ते हैं, जो गंगा जल तुम पीते हो, यमुना जल पीते हो वही यमुना जल हम भी पीते हैं। तुम्हारे अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहां से, कॉम्प्लान पीते हो क्या? कृष्ण से पूछे तो कृष्ण बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान देखिए कितनी विनम्रता से जवाब देते हैं। यहाँ वृंदावन के आचार्यगण बताते हैं भगवान ने क्या बोला कि भगवान कहते हैं कि कछ ग्वाल बालन का संग, किसका संग? हाँ, ग्वाल बालन, तुम्हारे संग के कारण मैंने गोवर्धन को उठाया। कछ ग्वाल बालन का संग कछ माखन लियो चुराए, कुछ तो मैंने माखन चुराया और कुछ ग्वाल बालों ने मुझे सपोर्ट करा। तो कुछ ग्वाल बालन का संग कछ माखन लियो चुराए, मैंने राधा जी की कृपा से ये गिरिवर लियो उठाए। मैंने खुद नहीं उठाया, ये राधा रानी की कृपा से, बिकॉज जब मैं गिरिवर्धन उठा रहा था तो राधा रानी टकटकी लगा के मुझे देख रही थी, उनके अंदर की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही थी और उस शक्ति से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। तो मेरी अपनी कोई शक्ति, मैं तो तुम्हारे जैसा ग्वाल बाल हूं। क्यों बोला भगवान ने ऐसा? इसलिए बोला कि अगर भगवान ये स्थापित कर दें कि मैं भगवान हूं तो ग्वाल बाल क्या करेंगे, उनके साथ क्रीड़ा करना छोड़ देंगे। और भगवान को आगे दंडवत तो दुनिया करती है लेकिन उनके साथ प्रेम का संबंध सिर्फ गोपियों और ग्वाल सखाओं का ही है, है ना। तो भगवान को सबसे बड़ी पराकाष्ठा है भक्ति की, प्रेम। वो प्रेम हम नहीं कर पाते, हम कहते तो हम बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन हम दंडवत करते हैं, है ना, कितने हम फॉलो करते हैं, नियम पालन करते हैं, लेकिन जो ग्वाल बाल हैं वो कोई ग्वाल फॉलो नहीं करते नियम, उनका प्रेम है, सखा, ये तो हमारा क्या है, यार है, ऐसे बोलते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं व्रजवासियों को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण जो है उनको सबसे प्रिय है व्रजवासी। तो उन्होंने बोला कछु ग्वाल बालन का संग कछु माखन लियो चुराए, कछु राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरधारी गोवर्धन को उठाया क्योंकि मुझे राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जब इंद्र को यह पता चला कि कौन थे, स्वयं कृष्ण थे, तो इंद्र घबराते घबराते कहां आए, यहां आए गोवर्धन पे, और साथ में क्या लाए, अब घबरा रहे थे। जैसे आप किसी भक्त का अपराध कर दो तो आप फिर आके बोलोगे प्रशांत मुकुंद प्रभु हमने ना अपराध कर दिया उस भक्त का, हमसे ना उनके क्रिटिसाइज कर दिया, हमें पता नहीं था वो इतने बड़े भक्त हैं, अब आप चलो हमारे साथ में, आप चलो और सॉल्व कराओ। तो आप आगे आगे चलना, हम पीछे रहेंगे, आप इंट्रोड्यूस कराना, हम दंडवत कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और बात भी निपट जाएगी, अर्चना अपराध। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस तरह से इंद्र ने किसको लिया, एरावत और सुरभि गाय, उनकी अपनी गाय है सुरभि और हाथी है एरावत। एरावत और सुरभि को लेकर यहाँ आते हैं गोवर्धन पे और कहते हैं तुम आगे चलो। तो सुरभि गाय और हाथी जो है एरावत आके क्या करते हैं, यमुना जल घी दूध इससे क्या करते हैं, कृष्ण का अभिषेक करते हैं कि पहले कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। जब किसी भक्त से कुछ काम करवाना हो तो हमेशा उसका ये नियम है, पहले उसको तारीफ करो, ग्लोरीफाई, अरे प्रभु जी आप तो क्या गाते, अरे प्रभु जी आप तो क्या गाते हैं, और उसके बाद में फिर बोल प्रभु जी आपसे कुछ काम था। ऐसे एक बार एक कथा आती है, लेकिन भौतिकवादी लोग जो होते हैं उनको मालूम नहीं है कि ग्लोरीफिकेशन करने का भी तरीका होता है, फॉल्स ग्लोरीफिकेशन से काम नहीं चलता। एक बार एक दो मित्र थे, एक ऊंट था और एक गधा था, एक ऊंट और एक गधा। तो ऊंट की शादी हो गई, कहते ना ऊंट की शादी हो रही है ना, ऊंट की शादी हो गई। तो ऊंट ने शादी का चोगा पहना, ड्रेस क्या पहनते हैं शादी में, शेरवानी, और सर पे क्या लगाते हैं, सहरा, पगड़ी, पगड़ी सहरा लगाया और गधे को निमंत्रण भेजा, फर्स्ट यू आर माई फ्रेंड प्लीज कम कम इन माई पार्टी लेट्स डांस टुगेदर, ऐसे करके बोला। तो जब वो आए, कौन, गधे मित्र उनके, ढेंचू ढेंचू आए। तो फिर जब वो आए तो उनको बोला, देखकर गधा अभी तारीफ तो करनी है, मित्र की शादी में आया है। तो हम फॉल्सली ग्लोरीफाई करते हैं कई बार, जो व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता वो गुण हम ग्लोरीफाई करते हैं, क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही गधे ने भी बोला, अहो रूपम अहो रूपम अहो रूपम, क्या बोला, अहो रूपम, मतलब क्या सुंदर रूप आ रहा है तुम्हारा। ऊंट जब सहरा लगा ले, कोई व्यक्ति अगर सहरा लगा के बुरा लगता है ना तो लोग उसके मित्र का मना रहे, तू तो ऊंट जैसा दिख रहा है। तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट किया, हो रूपम। तो अभी तो ऊंट फंस गया, बोला मेरे मित्र ने मेरी तारीफ करी। आप देखें भक्तों के बीच में भी यही होता है, जब आप तारीफ करो ना, अरे प्रभु जी आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, प्रभु जी सब आपकी कृपा है, प्रभु जी सब आपकी कृपा है, प्रभु जी आपकी कृपा से ही सब काम चल रहा है, करते हैं हम तो आराम है ना, इस तरह से बोलते हैं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो उसने भी बोला, जब उन्होंने बोला अहो रूपम तो बोला अहो ध्वनि अहो ध्वनि अहो ध्वनि, क्या ध्वनि है तुम्हारी, आ हा। तो सब बोले अच्छा हम तो कोई सिंगर ढूंढ रहे थे शादी के लिए बारात में गाने के लिए, तो वही इसी को ले चलते हैं। अभी फिर कैसी बारात निकली होगी, डे चूडे 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 चू तो ये बाराती, तो इसी तरह से फॉल्सली ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एरावत और सुरभि आकर फॉल्सली ग्लोरीफाई कर रहे थे इंद्र के कहने पर और कुंड अभिषेक कर रहे थे। तो एरावत ने जो अभिषेक किया उससे क्या बना, एरावत कुंड। और सुरभि ने जो अभिषेक किया उससे क्या बना, सुरभि कुंड। तो गोवर्धन की परिक्रमा में दोनों आते हैं। और फिर स्वयं जब इंद्र आए तो इंद्र ने क्या किया, भगवान को जब देखा भगवान का अभिषेक चल रहा है तो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं, तो उसने भी आकर क्या किया, अपने हस्त कमल से शंख लेकर ब्रह्मा जी का, और उससे क्या किए, दूध जल और अनेकों व्यंजन अनेकों बहुत सारे तरल पदार्थ, सप्त नदियों के जल और पता नहीं क्या क्या, सुरभि गाय का खुद का दूध लेकर कृष्ण का अभिषेक किया। और जब अभिषेक किया तो फिर साथ में उनको एक नाम भी प्रदान किया, क्या नाम प्रदान किया, गोविंद। और उसी स्थान का नाम है क्या, गोविंद कुंड। तो ये आपके सामने जो है इसका जल जो है अनेकों अनेकों जीवन में हमारे किए गए पाप को पल भर में सिर्फ एक बूंद नष्ट कर सकती है। तो अभी हम जाएंगे आफ्टर द लेक्चर प्रोग्राम के बाद वहां जाकर कुछ जल को आचमन करेंगे और बहुत ही ध्यान पूर्वक पैर ना धोएं, क्योंकि क्या है यहाँ पर जितने भी कुंड है स्नान करने योग्य नहीं है, मतलब स्नान करने योग्य का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, हम योग्य नहीं है स्नान करने के, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। स्वयं भगवान गोविंद कृष्ण जैसा ये स्वरूप है, तो भगवान का अभिषेक हुआ है, आज भी इस जल के अंदर वही मिठास वही सारी चीजें हैं। और आपको कोई डिसीज हो कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम सारे पाप सबको नष्ट करने की शक्ति अगर आप में श्रद्धा है उतनी सब ये दूर कर सकता है। तो सभी लोग नीचे धीरे धीरे उतरे, कोई स्लिप ना हो, बहुत गहरे कुंड है, अंदर चले गए तो हमें तैरना नहीं आता है, शायद किसी को आता हो तो बचा लेंगे। तो फिर तो फिर इसी तरह से क्या करना है, नीचे जाना है आचमन करना है। और यहाँ गोवर्धन जी की शिला है, साक्षात भगवान प्रकट है जिन्होंने गोवर्धन को उठाया, जहाँ अभिषेक हुआ वो स्थली बिल्कुल इधर है सामने। तो हम जाएंगे सब लोग वहां दंडवत प्रणाम करेंगे और गोविंद कुंड से थोड़ा थोड़ा जल लेंगे और फिर हम फिर वापस कहाँ जाएंगे, तीर्थ अपने स्थल में जाएंगे साथ में। हाँ जी हाँ मैं लेता हूँ अभी, एक मिनट प्रोजेक्ट दो पांच मिनट और दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लीला हुई थी, उस लीला का नाम है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे माधवेंद्रपुरी जी का स्थान आता है। कितनी दूर है प्रभु जी यहाँ से, पास है, जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, आप लेके चलेंगे हमें, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी जी का स्थान है, माधवेंद्रपुरी जी के स्थान पे हम जाएंगे। माधवेंद्रपुरी जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु जो थे ईश्वरपुरी, और उनके गुरु थे कौन, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो यहाँ पर भजन करते थे, क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जब वो यहाँ भजन करते थे तो एक दिन एक बालक यहाँ पर आया, जब वो गोवर्धन परिक्रमा कर जिस बैठक जिस स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे, वो आकर बोला कि हे माधवेंद्रपुरी मैं आपके लिए कुछ चीज लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ, पीने के लिए दूध, ठंडा ठंडा दूध पीजिए, और ये मटका जो है मैं कल आपसे ले लूंगा, छोटा वाला जो होता है कुल्लड़ मैं आपसे कल ले लूंगा, आप सिर्फ दूध इसका पान करिए। माधवेंद्रपुरी जी ने इस दूध का पान किया, पान करने के बाद वो बोला था मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन उसी रात्रि में उनको स्वप्न आया कि हे माधवेंद्रपुरी मैं और कोई नहीं, स्वयं कौन था, गोपाल कृष्ण था, जो गोपाल के रूप में आपके पास आया और आपको क्या प्रदान किया, दूध प्रदान किया, है ना। तो मैं इसी तरह से सबकी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ, योग क्षेमम वहामि हम, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं मैं उसे पूरा करता हूँ, जो आपके पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ। भगवान इस तरह से बोले और बोले कि मेरे पास में एक टीला है जहां पर मैं अंदर हूँ, उसके अंदर मैं क्या हूँ, हाँ गड़ा हुआ हूँ, हाँ तो आप क्या करो मुझे वहां से निकालो। तो इस तरह से जब उन्होंने बोला कि तुम मुझे वहां से निकालो और सारे के यहाँ के जितने भी ब्राह्मण हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको लेकर जाओ कीर्तन करते हुए और मुझे वहां से निकालो, तो उनका श्रीनाथ विग्रह देखा है आपने, गोवर्धन को उठाए हुए श्रीनाथ जी में जो नाथ द्वारा में है वो विग्रह आज नाथ द्वारा में है, पहले वो यहीं से प्राप्त हुआ था। और फिर ले जाकर उसको स्थापित करो कहां, गोवर्धन की हाइट टॉप में हिल के ऊपर जाकर उसको स्थापित करो वहां। उन्होंने फिर दूसरे दिन वो आए और सब लोगों के साथ जाकर उसको ढूंढा और स्थान से जब वो उनको प्राप्त हुए तो उनको स्थापित किया और उनका अभिषेक किया। तो ये स्थान देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसे आए और वापिस चले जाए तो हम जान नहीं पाएंगे लीला स्थली, लीला शक्ति किस प्रकार से हमारे अंदर एंटर कर सकती है, और उस लीला स्थली लीला शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, अपने भजन को प्रगाढ़ बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी जो थे, फिर उनका अभिषेक कर जिस रात्रि में सोए, फिर उनको कुछ समय बाद एक स्वप्न आया कि तुमने मुझे स्थापित तो कर दिया, लेकिन मैं जो अंदर था तो ठंडक में था, लेकिन अब मैं बाहर आ गया हूं तो क्या है, इसके कारण मुझे क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो तुम क्या करो, मुझे चंदन अप्लाई करो, मेरे शरीर पर क्या लाकर दो, चंदन लाकर लगाओ। तो चंदन लगाने के लिए उनको बोला गया, और फिर वो क्या किए, चंदन कहां से लाओ, जगन्नाथपुरी से लाओ, मलया चंदन। और मलय चंदन लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जी फ्लाइट लेकर चले गए, है ना, कैसे गए, पैदल पैदल गए, उड़ीसा जाएंगे यहाँ से, अभी आपको बोले यहाँ से आपको गेस्ट हाउस तक पैदल जाना है, दो दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल चले जाएंगे और लेट जाएंगे रास्ते में है कि नहीं। और माधवेंद्रपुरी जी यहाँ से जगन्नाथपुरी तक पैदल गए, किसके लिए, स्वप्न में गोपाल ने बोला, अभी तो साक्षात गोपाल आगे बोले हैं तब भी बिलीव है, चल चल आगे बढ़। तो श्रद्धा देखिए, भजन करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। स्वप्न में बोला गया गोपाल की इच्छा पूरी करने के लिए, माधवेंद्रपुरी जी कहाँ गए, जगन्नाथपुरी। और वहां जब जा रहे थे, रस्ते में एक स्थान पड़ता है रेमुणा, जो उड़ीसा के भक्त हैं वो जानते हैं, रेमुणा जानते हैं, रेमुणा स्थान, भुवनेश्वर से 8 घंटा लगता है जाने के लिए, बालेश्वर में पड़ता है, बालेश्वर जो स्थान है उड़ीसा में आपके, रेमुणा, रेमुणा में एक स्थान है जहां पर एक भगवान है जिनका नाम है गोपीनाथ, गोपीनाथ मतलब जो गोपियों के नाथ है। तो माधवेंद्रपुरी जी गोपीनाथ स्थान में पहुंचते हैं और वहां जाकर गोपीनाथ को प्रणाम करते हैं, और वहां देखते हैं कि जो वहां के पुजारी हैं वो भगवान को भोग लगा रहे हैं, खीर का, किसका, और वो बोलते हैं ये जो खीर है ये कोई नॉर्मल खीर नहीं है, इस खीर को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, आज भी ऐसा ही बोला जाता है कि इस खीर को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, इसलिए उस खीर का नाम है अमृत केली। क्या नाम है, अमृत केली। और ऐसी अमृत केली खीर को प्रदान कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी जी ने जब ये देखा तो उस पुजारी से बोला कि पुजारी जी मुझे खीर बनाने का प्रोसीजर बताइए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ समय बाद अपने जब धाम वृंदावन पहुंचूंगा तो वहां जाकर अपने गोपाल को मैं यही खीर प्रदान करूंगा, अमृत केली। फिर जब ये सोच ही रहे थे तो उनको लगा ला 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 ला, ला ये क्या किया, मैं तो भगवान के भोग से पहले ही भगवान के भोग का स्मरण किया, है ना। हम लोग तो क्या करते हैं, पहले स्मरण करते हैं मुझे क्या पसंद है फिर भोग लगाते हैं, असली वो भोग नहीं है, भोग तब लगता है जब बनाने वाले के मन में भाव हो कि मेरे गोपाल को क्या पसंद है, मेरे मेरे कृष्ण को क्या पसंद है, ये सोचते हुए बनाए तो एक्चुअली भोग बनता है व्यक्ति का, और ना अन्यथा भोग नहीं है ना, आपने पहले ही भोग लिया फिर भगवान क्या भोगेंगे, और भगवान तो क्या है, सारी चीजों के भोगने वाले हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। तो ऐसे जो गोपाल थे, माधवेंद्रपुरी थे, उनको बहुत अपराध महसूस हुआ, उन्होंने पुजारी को बोला मुझे क्षमा करिए, और फिर वो उदास होकर बाहर आ गए। लेकिन जब वो बाहर आए तो पुजारी ऑफर करके भोग लगाकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर आकर सो गए, आफ्टरनून रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे तो भगवान सपने में आए गोपीनाथ और बोले हे पुजारी तुम्हारे लिए एक सेवा है। जी गोपीनाथ बोलिए कि मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक कुल्हड़ खीर बचा के रखी है, वो जाकर उनको दे दीजिए। कह रहे सारी भोग तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रसाद कहाँ है, मैंने अपने अल्टर के पीछे अपने विग्रह के पीछे छुपा के रखा है। अच्छा, तो पुजारी दौड़कर जाते हैं उठकर, और फिर ताला खोलते हैं ढूंढते हैं तो देखते हैं भगवान के जो नीचे का वस्त्र है उसके पीछे एक कुल्हड़ एक रखा हुआ था, मतलब 12 कुल्हड़ लगाए थे, 11 कुल्हड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसने काउंट भी नहीं किया, एक कुल्हड़ चोरी हो गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। खीर चोर गोपीनाथ जो थे वो फिर उनके लिए खीर प्रदान करी गई, और पुजारी लेके गए और आवाज लगाई माधवेंद्रपुरी यहाँ कोई माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है, हरि बोल माधवेंद्रपुरी, सब जगह पुकारा तो वो माधवेंद्रपुरी घबरा गए, मैंने क्या अपराध किया, बोले नहीं नहीं आपने कोई अपराध नहीं किया, आप इतने महान भक्त हैं कि स्वयं गोपीनाथ मेरे सपने में आके बोले कि मेरे भक्त को जाकर क्या प्रदान करो, अमृत केली प्रदान करो। तो उन्होंने लाकर अमृत केली दी, और फिर उन्होंने उस कुल्हड़ को खाने के बाद रख लिया कि जब मैं वापस वृंदावन जाऊंगा तो इसका एक एक अंश तोड़कर रोज प्रसाद पाऊंगा। तो यहाँ की जो ब्रज रज है, यहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो भी हमारे पुजारी यहाँ से प्रदान करते हैं हमको, एक एक वस्तु चिन्मय वस्तु है, एक एक वस्तु योग्य है, योग मूल्यवान है हमारे लिए, हम अमूल्य कह सकते हैं, हाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल आइटम, मैचलेस गिफ्ट्स है, मिलते हैं यहाँ से। उसको ले जाकर अगर कुल्लड़ भी है तो उसका एक एक तिनका प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भी ये सोचते हुए उसको अपने गमछे में बांध कर चले गए कहाँ, चंदन लेने। और चंदन लेकर लौटे तो फिर रेमुना में सोचे थोड़ा अमृत केली खा लूं, तो फिर स्नान विश्राम किए, तो रात में सपने में फिर कौन आए, गोपीनाथ, और बोले माधवेंद्रपुरी तुम इतने सारे चंदन को लेकर कहाँ जाओगे, हाँ गोपाल को वहां लेकर जाओगे वृंदावन, तो तुम यहाँ क्यों नहीं मुझको प्रदान कर देते हो। तो उन्होंने सारा का सारा चंदन उनको लगा दिया, किसको, गोपीनाथ को, और बोले तब मुझे यहाँ जो ठंडक मिलेगी वही ठंडक मुझे गोपाल रूप में वृंदावन गोवर्धन में भी प्राप्त हो जाएगी। तो वही ठंडक उनको प्राप्त हुई, उसी तिथिया को नाम बोलते हैं क्या, अक्षय तृतीया, इसलिए उस दिन चंदन यात्रा होती है। आज भी इस्कॉन में चंदन, हाँ अनेकों मंदिरों में चंदन को घिसा जाता है भक्तों के द्वारा, तो जो लोग चंदन घिसने की सेवा करते हैं उन्हें माधवेंद्रपुरी की तरह कृपा प्राप्त होती है, भजन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर वो क्या किए, चंदन वहां अप्लाई कर यहाँ वापिस आए। तो ऐसे महान माधवेंद्रपुरी यहीं बैठकर भजन करते थे, कहा गोविंद कुंड पर, और वो स्नान स्थान भी है जहां पर आकर उनको ग्वाल वाले ने क्या किया था, दूध पिलाया था। तो वो वृक्ष है, प्रभु जी हमारे साथ हैं, तो हम उनके साथ साथ चलेंगे, वो हमको स्थान दिखाएंगे, माधवेंद्रपुरी जी का बैठक दिखाएंगे, और गोवर्धन का हमें और भी अनेकों स्थान दिखाएंगे, दर्शन करेंगे, ज्यादा समय ना रुककर हम वापस चलेंगे और आगे की कथाएं बाद में करेंगे, ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ हनुमान जी वाली भी कथा आती है कि गोवर्धन जो थे, गोवर्धन जो उनको उठा लिया था हनुमान जी ने, हनुमान जी कहाँ से उठा के ला रहे थे, हिमालयन रेंजेस से, जहाँ द्रोण पर्वत जो है वहां से उठाकर ला रहे थे, किस लिए, राम सेतु बनाने के लिए। जब सेतु बनाने के लिए ला रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, अनाउंसमेंट हो गया, आकाशवाणी हो गई, पुल ओवर, पूरा पुल बन गया, अब और अनेक पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, हनुमान रिटर्न बैक सून 360 डिग्री। तो हनुमान जी हाथ में लिए गोवर्धन, क्या किए, यहीं छोड़ दिए। जब छोड़े तो गोवर्धन क्या करे, क्रंदन किए कि हे हनुमान, मैं तो राम की सेवा नहीं कर पाया, अपने स्वामी विष्णु की सेवा नहीं कर पाया, ऐसे जीवन का क्या फायदा, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। तो फिर हनुमान जी ने रामचंद्र जी को अप्रोच किया, बोले रामचंद्र जी गोवर्धन बहुत ही रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करिए सेवा में उसको। तो भगवान राम बोले उनको, बोलो इंतजार करें, अभी पत्थर जो है सिर्फ सेतु में लगने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस पेज बोलते हैं ना, थोड़ा इंतजार करो, फल मीठा होगा। तो मैं द्वापर युग में स्वयं आने वाला हूँ कृष्ण, और फिर क्या करूंगा, अपनी ज्यादातर क्रीड़ाएं, अपनी लीलाएं कहाँ करूंगा, स्वयं तुम्हारे ऊपर करूंगा। तो जहां सेतु में भी मैं तुम्हें चरण प्रदान करने वाला हूँ, उनके ऊपर से होकर गुजरूंगा, और द्वापर युग में भी मैं तुम्हें क्या प्रदान करने वाला हूँ, अपने चरण प्रदान करने वाला हूँ। तो कृष्ण के चरण को प्राप्त करने वाले महान गोवर्धन जो है, इनको बोला जाता है हरिदास वर्यम, दासों में दास गोवर्धन। आप देखिए, आपके ऊपर धूप पड़े और फिर बोला जाए आपको खड़े होकर यहाँ पर क्या करना है, सेवा करनी है, तो आधे ज्यादा लोग तो फॉल डाउन, गिर जाते हैं वहीं पर, बेहोश हो जाते हैं। अरे प्रभु जी जल्दी से ठंडाई पिलाओ, कुछ ठंडा ठंडा पिलाओ, चक्कर आ रहे हैं। और गोवर्धन 7 दिन 7 रात तक अपने ऊपर क्या लिए, भगवान कृष्ण तो उठा लिए गोवर्धन, नीचे आ गए सारे लोग, लेकिन जो संवर्तक वारिश थी उसको कौन लिए अपने सर के ऊपर, गोवर्धन लिए। आप कर सकते हैं, आपको द्वारका में छत पे बिठा दिया जाए, बोले आप प्रभु जी भीगिए और कोई पानी की बूंद नीचे नहीं आनी चाहिए, कितनी देर बैठेगा व्यक्ति। तो ये सेवा टेस्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं हरिदास वर्यम, दासों में दास श्री गोवर्धन, गिरधारी गोवर्धन की, गिरधारी गोपाल की, श्याम सुंदर की, हिताई गौर प्रेमानंदे, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, गोवर्धन यात्रा की, गोविंद कुंड की, हरि बोल।
उनको अपराध ये लगा कि भोग लगने से पहले मेरे मन में आया मैं इसे पा लूं, टेस्ट करूंगा तभी तो बना पाऊंगा,
तो भी हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा आचमन करेंगे और प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए, आइए प्रभु जी, इधर आइए।
अच्छा बोलिए बोलिए, ये उसको ऊपर कर दीजिए।
नहीं नहीं, वो तो आप लोग
जय जय जय
हरि बोल।